आस्था की कमर को उसने बाथरूम में बड़ी ही बेदर्दी से रगड़ा था, उसे काफी तकलीफ दी थी। शायद इसी वजह से आस्था को लग गया था। अब अरमान ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब आगे ऐसा लग रहा था मानो आस्था के दर्द को वो खुद अपने जिस्म पर महसूस कर रहा हो। आस्था अरमान को इस तरह से आंखें बंद किए हुए देखकर बोली, नहीं नहीं अरमान जी, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं, ये तो बस ऐसे ही हैं। और हाँ, हम अभी सूप बनाने के लिए जा रहे हैं, आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, आप इतना क्यों घबरा जाते हैं बार बार? हाँ, डोंट वरी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आस्था, जिसे चटर पटर बोलने की आदत थी, अब जैसे ही उसने एक बार फिर से अपनी बातें करना शुरू की, अरमान को वाकई हंसी आ गई थी। वो सोच रहा था जिसके खौफ से डर भी कांपते हों, उसकी आफत वाइफ उसे कह रही थी कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उसे ये नहीं पता कि अरमान सिंघानिया उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा देगा? इतना ही नहीं, किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहेगा, उसे कभी भी उससे दूर जाने नहीं देगा। तब अरमान को हंसते हुए देखकर आस्था ने मुंह बना लिया था और चिढ़कर बोली, क्या हुआ, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हम सच्ची कह रहे हैं, हम सच्ची आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरमान ने आस्था को पकड़कर उसे अपने ठीक बराबर में बिठा लिया था और उसके कंधे पर हल्का सा पुश करते हुए बोला, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है आफत, और मैं यहाँ इस मिनी हॉस्पिटल में बोर हो रहा हूँ, मुझे मेरे रूम में लेकर चलो। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो इनकार करते हुए बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने अपने आप को कितना ज़्यादा हर्ट किया है, और आप इस तरह से कमरे में कैसे जा सकते हैं? शायद डॉक्टर इस बात की परमिशन ना दें। अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, अरमान सिंघानिया को किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरमान सिंघानिया डिसीजन लेता है, परमिशन दूसरे लेते हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था केवल सपाट चेहरे से अरमान को देखती रही। कहीं ना कहीं अरमान का इतना ज़्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस होना, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना आस्था को थोड़ा अजीब भी लगा करता था, लेकिन अभी उसने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जल्दी ही अरमान ने टाइगर पुकारा और टाइगर पलक झपकते ही अरमान के सामने मौजूद था। अपने आप को हर्ट करने के बाद टाइगर एक बार फिर मिनी हॉस्पिटल के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया था कि ना जाने कब उसके किंग को उसकी ज़रूरत पड़ सके। अब जैसे ही अरमान ने टाइगर की ओर देखा और उसके शरीर पर जो चोटें दिखाई दे रही थी उन्हें देखा, तो वो समझ चुका था कि इस वक्त टाइगर ने खुद को हर्ट किया है। तब अरमान ने टाइगर की ओर देखकर कहा, मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो। इतना कहते ही टाइगर तुरंत आगे बढ़ा और अरमान को सहारा देकर लेकर जाने लगा। हालांकि खुद वो जख्मी पड़ा था, लेकिन उस वक्त उसे अरमान की बात माननी थी, तो जल्दी ही वो अरमान को लेकर कमरे में जाने लगा था। वहीं मारिया सपाट चेहरे के साथ टाइगर के शरीर पर लगे जख्मों को देख रही थी, क्योंकि टाइगर ने जो टी शर्ट पहनी थी उसमें से ब्लड के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो गहरे रंग की टी शर्ट थी, लेकिन टाइगर के जिस्म के जख्म उसमें से शो हो रहे थे। जल्दी ही आस्था अरमान के साथ साथ कमरे में आ गई थी और टाइगर जैसे ही कमरे से बाहर गया, मारिया कुछ मेडिसिन के साथ उसका इंतजार कर रही थी। टाइगर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और शर्ट उतारकर जल्दी ही मारिया के सामने बैठ चुका था, और मारिया ने अच्छे से टाइगर के जख्मों को क्लीन करके ड्रेसिंग की थी और उसके घाव पर दवाइयां मेडिसिन अप्लाई कर दी थी। वेल, वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त अपने बेडरूम में था और आस्था उसके साथ थी। तभी बेडरूम में आते ही अरमान ने एक पल आस्था की ओर देखा और अगले ही पल बोला, अपने कपड़े उतारो। अभी जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो सोचने लगी कि ये क्या कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो, जबकि अभी उन्हें तो काफी ज्यादा जख्म लगे हैं। इन सब जख्मों में भी क्या इन्हें मेरे कपड़े उतरवाने की पड़ी है? कहीं ना कहीं आस्था के दिलो दिमाग में कितने ही सारे सवाल जवाब चलने लगे थे। तभी अरमान आस्था को इस तरह से सोचते हुए देखकर बोलता है कि आपको सुनाई नहीं दिया वाइफी, अपने कपड़े उतारो। अब अरमान की बात सुनकर आस्था ने जल्दी ही अपना सूट उतारना शुरू कर दिया था, और सूट उतारकर उसने अपनी गहरी घनी पलकों से अरमान की ओर देखा, क्योंकि आस्था समझ नहीं पा रही थी कि अरमान इस सिचुएशन में करना क्या चाह रहा है। आस्था ने अपने शरीर के कुछ अंगों को अपने हाथों से कवर करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो अरमान के सामने कितनी बार बिल्कुल नेकेड सिचुएशन में थी, लेकिन अब आस्था को इस वक्त काफी ऑकवर्ड सा लग रहा था। वहीं अरमान ने ध्यान से आस्था को देखा और बोलता है कि अब पलट जाओ। आस्था पलट गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो आस्था कोई रोबोट हो और अरमान उसे अपने हिसाब से चला रहा हो। अरमान ने बोला पलटो, तो वो पलट जाती है। अरमान ने बोला कपड़े उतारो, तो वो उतार देती है। तभी अरमान ने आस्था को अपने करीब बुलाया था। आस्था आंखों में कितने ही सारे सवालों के साथ अरमान के पास जाने लगती है। तभी अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपने पास बेड पर लिटा दिया था। अब आस्था हैरान हो गई और थोड़ा सा धीमी आवाज में बोली, अरमान जी आप क्या कर रहे हैं? आपकी ही कंडीशन ठीक नहीं है, आपको काफी जख्म लगे हैं, आप प्लीज इस तरह से मत कीजिए।
तभी अरमान ने अपनी इंडेक्स फिंगर को आस्था के होठों पर रखते हुए बोला कि तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले ही पल उसने आस्था की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया था और जहां पर उसने आस्था को जख्म दिए थे वहां पर मरहम लगाना शुरू कर दिया था। अब तो आस्था, जो थोड़ी देर पहले इसके दिमाग में कितनी सारी उल्टी सीधी बातें चल रही थी, एकदम से ही सारी बातों पर विराम लग चुका था। और आस्था अब शर्मिंदा सी हो गई थी कि वो अपने पति को कितना ज्यादा गलत समझ रही थी। लेकिन फिलहाल अरमान की इस हरकत से आस्था के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसका दिल चाहा कि इस वक्त वो अरमान को बहुत सारा प्यार करे। आस्था को मुस्कुराते हुए अरमान देख चुका था और बड़े ही सॉफ्टली और जेंटली जख्मों पर मरहम अप्लाई कर रहा था। आस्था को ब्लड तो नहीं निकला था, लेकिन उसकी स्किन जरूरत से ज्यादा ही लाल हो चुकी थी। ऊपर से आस्था एकदम बेदाग और सफेद थी, जिस पर हल्की सी रेडनेस ज्यादा दिखाई दे रही थी, मानो कि कितना ज्यादा उसे लग गया हो। जल्दी ही अरमान ने आस्था को हाथ पर, उसकी कमर पर, पेट पर अच्छे से दवाई लगा दी थी और उसके बाद उसने अपनी एक हल्की सी शर्ट पहनने को दे दी थी, ताकि उसके जख्मों पर जो दवाई लगी है उस पर उसके कपड़े ना लगे। जल्दी आस्था ने अरमान की शर्ट पहन लिया था। उसमें वो बड़ी प्यारी सी लग रही थी, एकदम बेबी डॉल की तरह। अरमान ने आस्था को अपने बेहद पास बैठा रखा था। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरमान आस्था की और अपने बीच में किसी को भी पसंद नहीं किया करता था, लेकिन जब दरवाजे पर नानी माँ की आवाज सुनाई दी तब आस्था चहकने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है नानी माँ आई हैं, हम दरवाजा खोल कर आते हैं। तब अरमान आस्था का हाथ पकड़े ही बोलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल सकता है। और अगले ही पल अरमान ने रिमोट के थ्रू दरवाजा खोल दिया था और नानी माँ हैरानी से दरवाजा खुलते हुए देख रही थी। एक पल को थोड़ा सा वो डर भी गई थी, क्योंकि नानी माँ के मन में भूत प्रेत और छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा ही उनका दिमाग चलने लगता है। अब दरवाजा खुलने पर नानी माँ जल्दी से अपना थूक निकलते हुए अंदर आ गई थी। उनके हाथ में सूप की ट्रे थी।
क्योंकि नानी माँ चाहती तो राजेश के हाथों भी सूप भेज सकती थी, लेकिन जिस तरह से हल्दी में केमिकल डाला गया था उसके बाद वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, स्पेशली आस्था और अरमान की सेफ्टी को लेकर। इसीलिए खुद ही वो सूप लेकर उन दोनों के पास आती है। और जैसे ही नानी माँ ने आस्था को इस तरह से अरमान की शर्ट में देखा, नानी माँ मन ही मन में मुस्कुराने लगी थी और थोड़ा सा शर्माते हुए अरमान की ओर देखकर बोलती हैं, दामाद जी, हम आपके लिए सूप लेकर आए थे, तो आप थोड़ा सा खा लीजिए। वहीं आस्था भी थोड़ा सा शर्माने लगी थी और रिस्पेक्ट से बोली, नानी माँ, प्लीज आप क्यों खड़ी हैं, आइए ना बैठिए। तब नानी माँ सिचुएशन को देखते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम दामाद जी को फटाफट से सूप पिलाओ और तब तक मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। वैसे भी आज इतना सब कुछ हो गया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, हम जाकर अपने कमरे में आराम करते हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था ने अपनी पलके झपटाकर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी और नानी माँ मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी का पल्लू मुँह में डालकर जल्दी ही वहाँ से चली गई थी। तब अरमान नानी माँ को जाते हुए हैरानी से देखकर बोलता है, ये तुम्हारी नानी माँ के साथ कुछ मसाला है क्या? जब देखो अजीब अजीब सी शक्लें बनाते रहती है। हालांकि शक्ल तो अजीब अजीब सी आस्था भी बनाती थी, लेकिन आस्था तो अरमान को क्यूट लगा करती थी, लेकिन नानी माँ का इस तरह से अजीब अजीब सी शक्ल बनाना अरमान को हैरान कर गया था। तब आस्था तुरंत भड़कते हुए बोली कि आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारी नानी माँ के बारे में बातें कर रहे हैं और नानी माँ हमारी ऐसी वैसी शक्ल क्यों बनाएंगी, इतनी प्यारी तो हैं वो। तब अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था। वो समझ चुका था कि नानी माँ के बारे में आस्था से कुछ भी बातें करना बिल्कुल पूरी तरह से वेस्ट है, तो इसीलिए उसने अब कुछ नहीं बोला और जल्दी ही अरमान ने आस्था के हाथों से सूप पीना शुरू कर दिया था। आस्था ने अरमान को अच्छे से सूप पिलाकर उसके फेस को अपने ही दुपट्टे से क्लीन किया और उसके बाद आस्था अरमान के पास बैठकर उसके सर पर हल्की हल्की मसाज देने लगती हैं, ताकि अरमान को थोड़ा बेटर फील हो और वो एक सुकून की नींद सो जाए। और आस्था के ऐसा करने के केवल कुछ ही देर बाद अरमान के सोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। आस्था ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अरमान की ओर देखा। अरमान ने आस्था को बेहद कसकर पकड़कर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी सी भी अपनी पकड़ ढीली करेगा तो आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। अरमान को देखकर वो सोच रही थी, आखिरकार क्यों इन्होंने अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है, क्यों ये अपनी ज़िंदगी नॉर्मल हंसी खुशी नहीं जी सकते हैं, क्यों इतना गुस्सा है इनके अंदर। लेकिन हमारा नाम भी आस्था है और हम उनकी ज़िंदगी से सभी दुख दर्द गम को बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक देंगे और इन्हें इतना प्यार करेंगे कि ये कभी भी उनकी ज़िंदगी में दर्द नहीं आएगा। ये कहते हुए आस्था ने सोते हुए अरमान के माथे को चूम लिया था। हालांकि आस्था भले ही मन मन में ये बातें बोल रही थी, लेकिन अरमान को एहसास था कि आस्था इस वक्त क्या सोच रही हैं। वेल, अब आस्था जो अरमान की शर्ट में थी उसने सबसे पहले अरमान को थोड़ा सीधा करके आराम से तकिया लगाकर लेटा दिया था और फिर अपना कुर्ती चेंज किया, क्योंकि इस वक्त वो घर वालों के पास जाकर देखना चाहती थी कि सब ठीक है या नहीं है, या फिर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए हैं,
क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था ये काफी ज्यादा बड़ा था। आस्था जल्दी ही सूट पहनकर जल्दी से नीचे जाने लगी। हालांकि काफी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका मन किया कि एक बार जाकर वो देखाए। और जैसे ही वो बाहर गई, उसने देखा कि सभी के सभी लोग इस वक्त हॉल में जमा थे। आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी। काफी रात हो चुकी थी, तकरीबन रात के 1 या 1.5 बज रहा होगा। अब आस्था जल्दी नीचे गई और उन सबके सामने जाकर पूछती है, क्या हुआ, आप सब लोग इतनी रात को यहाँ, सब ठीक है ना, आप सब लोग सो क्यों नहीं रहे हैं? अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी बारी बारी से आस्था को देखने लगते हैं। आकाश, रश्मि, ध्रुव, आहान, रौनक, प्रियंका, नानीमा, दादीजी, सुमित, राधिका, वो सब उस वक्त वहीं मौजूद थे। और आस्था को वहां देखकर दादाजी ने सवाल करना शुरू कर दिया था, क्या बात है बेटा, क्या अरमान ठीक तो है ना, क्या वो सो गया है, उसके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना उसको? ये कहते हुए दादाजी का गला भर आया था। तब आस्था ने तुरंत दादाजी के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया और दिलासा देते हुए बोलती है, आप क्यों परेशान होते हैं दादाजी, अरमान जी बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज परेशान मत होइए, और अभी वो सो रहे हैं, जितना सोएंगे उतना उन्हें आराम मिलेगा। कहीं ना कहीं इस वक्त कोई अरमान के बारे में सारा सच नहीं जानता था। उनके मन में ढेर सारे सवाल थे कि आखिरकार अरमान ने खुद को इस तरह से हर्ट क्यों किया। लेकिन आस्था तो पहले से ही सारा सच जानती थी। आस्था को बहुत पहले जब वसुंधरा रघुवंशी मेंशन आई थी, उस वक्त आस्था ने उनकी एक एक बातों को सुन लिया था और किस तरह से वसुंधरा एक मासूम बच्चों को मारा करती थी, उसे मासूम बच्चों के जख्मी दिल को और ज्यादा जख्मी दिया करती थी। ये सारी बातें अब आस्था के सामने थी। लाइक, शेयर, कमेंट करें दोस्तों।